और जब तक वो मेरे सिर पर हाथ न फेर दे, जब तक वो अपनी गोद में मुझे न ले ले, मुझे शांति मिलने वाली नहीं है। और जब तक वे हमारी अभिषेक की सामग्री को स्वीकार न कर ले और यही उनको हम कई घड़ों से स्नान करा करके अयोध्या ले न चले, तब तक मुझे शांति मिलने वाली नहीं है। परंतु शत्रुघ्न ये चित्रकूट है, सबको शांति देने वाला है, बड़ा पवित्र ये पर्वत है, सबके भाव कुभाव को माने कुभाव को समाप्त करने वाला है, सद्भाव को जगाने वाला है, बड़ा पवित्र पर्वत है। शत्रुघ्न इस पर्वत के अंदर अपने और आगे बढ़ते हैं, इस महद्वन के अंदर अपने आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ करके और थोड़े और गहन वन में गए। और देखो ध्यान देना, वहां तो लक्ष्मण जी साल वृक्ष के ऊपर चढ़े थे, अब यहाँ भरत जी एक साल वृक्ष के ऊपर चढ़ते हैं, साल वृक्ष के ऊपर चढ़ करके और देखते हैं देखे राम जी का आश्रम किधर है। तो वो ऊपर चढ़े, चढ़ करके देखा कि झंडी लगी हुई है, साल वृक्ष से बोलते हैं कि हे शत्रुघ्न उधर झंडी लगी हुई है, हमारा मार्ग बिल्कुल ठीक है, इसी मार्ग से चलना है, बस हम राम जी की कुटिया के नजदीक पहुंच रहे हैं, ओहो हमारा परिश्रम सफल हो रहा है। इस प्रकार से भरत जी महाराज शत्रुघ्न को साथ में लिए हुए और सबको साथ में लिए हुए और आगे बढ़ रहे हैं। इधर महाराज भरत जी ने अपने जगह में भ्रातरम दृष्टुम शत्रुघ्नम अनुदर्शयन, उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव अब ये संक्षिप्त मार्ग से हमारी माताओं को आप लाने का प्रबंध कीजिए और सुमंत्र आप भी जाइए। और फिर उसके बाद वे आगे बढ़े। राम दर्शन जस तरसो भरतस्य एव तस्य च, अब राम जी महाराज के दर्शन करने की इच्छा से वे भरत जी शत्रुघ्न जी को साथ में लिए हुए, निषाद राज को साथ में लिए हुए थोड़े और आगे बढ़े। ओहो और आगे बढ़े तो उनको वो पर्णकुटी के दर्शन हो गए, जिसमें राम जी महाराज विराजमान थे, उस पर्णकुटी के दूर से दर्शन हुए। भरत जी को बड़े आनंद का अनुभव हुआ। सियावर रामचंद्र की, इस प्रकार से दर्शन करते ही भरत जी महाराज का मन भर गया और मन में विचार आया कि ओहो ये देखो ये मार्ग है, अब मार्ग मिल गया। ये इस मार्ग के ऊपर ये लक्ष्मण ने कई वृक्षों के ऊपर कपड़े बांध बांध के चिन्ह कर रखे हैं, क्योंकि लक्ष्मण यहाँ से जल लेकर के जब कुटिया में जाता होगा उसको किस प्रकार से मार्ग का तय करना पड़े भाई, ये चिन्ह बने हुए। ओहो ये देखो यहाँ पर हाथियों की लीद पड़ी हुई है, ये यहाँ पर भैंसों की लीद पड़ी हुई है, यहाँ पर मृगों के मींगने पड़े हुए हैं, ये यहाँ पर बकरों के मींगने पड़े हुए हैं, ये यहाँ पर ये इसका अर्थ है कि ये यहाँ पर पशु खूब बराबर आते जाते रहते हैं। ओहो यहाँ पास में ही जो है भरद्वाज ने जैसा बताया था वैसी मंदाकिनी भी बह रही है, वो जितना जैसा मार्ग बताया बिल्कुल ठीक लग रहा है। हाथियों को तो भाई अब खूब आराम से जल पिलाओ और घोड़ों को भी जल पिलाओ और जो है फिर अपने और आगे बढ़ते हैं, फिर वो लोग तो बाद में धीरे धीरे आते रहेंगे, अपने लोग और आगे बढ़ते हैं। ओहो जगत्याम पुरुष व्याघ्र आस्ते वीरासने रहते हैं, आगे चल करके और जो है चित्रकूट को देख करके बोलते हैं कि ये वो चित्रकूट है जिसमें भगवान श्री राम विराजमान है, लेकिन मेरे जीवन को तो धिक्कार है, आज मेरे कारण से ऐसे वन के अंदर आकर के इनको रहना पड़ता है। ऐसे चलते चलते और आगे गए और फिर मन में सोचने लगे कि आज राम जी के चरणों में जाकर गिर जाऊंगा, सीता के चरणों में गिर जाऊंगा, लक्ष्मण के चरणों में गिर जाऊंगा, लोगों ने मुझे बहुत कुदृष्टि से देखा है, मेरा सारा कलंक राम जी के चरणों में जाने से मिट जाएगा। और फिर आगे उन्होंने एक बहुत बड़ी पर्णशाला को देखा, पर्णशाला को देखा कि जिसके पास साल ताल तमाल के वृक्ष लगे हुए हैं और जिसके आगे बहुत बड़ी चौकी बनी हुई है, जहाँ पर अनेक प्रकार के शस्त्र रखे हुए हैं, वे शस्त्र इंद्र के शस्त्र के समान जगमगा रहे हैं, और वहाँ जो बाण है वो सूर्य के किरणों के समान चमक रहे हैं, और जो है कई बाण ऐसे जो सर्पों के समान टेढ़े टेढ़े हैं। इन शस्त्रों को देखा, उन्होंने तलवार लटकती हुई देखी और उन्होंने हाथों के जो ये चमड़े के बने हुए कवच है ये देखे और कवच दूसरे भी देखे, और उसके बाद ददर्श भरतस्तत्र है। और दूर से भरत जी महाराज ने देखा कि कुटिया के आगे चौकी पर भगवान श्री राम जटा धारण किए हुए बड़ी प्रसन्न मुद्रा में विराजमान है और काले मृग का उन्होंने जो है वस्त्र पहन रखा है। इस प्रकार से राम को देखा, खूब ऊंचे ऊंचे उनके कंधे हैं, महाबाहु है, पृथ्वी के सागरांत पृथ्वी पर जो शासन करने वाले हैं, फिर भी पिता की आज्ञा से जो इस प्रकार वन में बैठे ऐसे राम के दर्शन किए। दर्शन करके वो वहां पर जोर जोर से विलाप करने लगे कि हे राम, आप तो बड़े गुणवानों की सभा में बैठ करके बात कहने वाले थे, वो आज पशुओं के इस बीच के अंदर आप विराजमान हो। आप बड़े दिव्य दिव्य हजारों वस्त्र पहनने वाले, वो आज मृगचर्म पहने वाले हो। आपके सिरों के ऊपर बड़ा सुंदर मुकुट लगकर उस पर फूल रहते थे, आज आपके सिर के ऊपर जटाओं का भार है। और आप हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद फिर जो है अवशिष्ट में जो प्रसाद होता आपके लिए, कितने ही रसोई हर ग्रास की प्रसन्नता के लिए तरसते थे, वो आप यहाँ पत्ते और फल फूल खाकर के निर्वाह कर रहे हैं। आपके शरीर के ऊपर जगह जगह चंदन का लेप उचित था, वहाँ पर आज मिट्टी लगी हुई है। इस प्रकार से भरत जी महाराज मनी मन में बड़ी ग्लानी का अनुभव कर रहे हैं। इत्येवं विलपन् दीनः, इस प्रकार से भरत जी जोर जोर से वहां पर दीन भाव से रोने लगे और रोते रोते सीधे उछल करके गए और उछल पर जाकर के सीधे राम जी के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि महाराज जी, भरत आपके चरणों में प्रणाम करता है। उस समय में भरत के द्वारा केवल एक ही बात निकली, आर्य, बस और कुछ नहीं निकला। और उनके वाणी से जो है सारे शब्द निकलने बंद हो गए और उसकी जगह आंखों से आंसू ही आंसू आने लगे और वो सिसकियां मार करके एक बच्चे के समान रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। इतने में शत्रुघ्न आए, उन्होंने राम जी के चरण पकड़ लिए, वो भी रोने लग गए। राम जी महाराज ने उन दोनों भाइयों को उठाया और राम जी ने उनको अपने छाती से लगाया। राम जी कुछ बोलना चाहते थे, राम जी से कुछ भी नहीं बोला गया और राम जी भी भाई ताड़ 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 आंसू बहाते गए और राम जी भी रोते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में चंद्रमा और सूर्य हो, जिस प्रकार से शुक्र और बृहस्पति के साथ में आकाश में हो। लक्ष्मण जी ये सब देख करके हाथ जोड़ करके उन्होंने भरत के चरणों में प्रणाम किया और मनी मन में उनको बड़ी ग्लानी हुई कि कैसे भरत के लिए मैं क्या सोचने लग गया। उसके बाद राम जी महाराज ने भरत के सिर पर हाथ फेरा, उसके पृष्ठ भाग पर हाथ फेरा और राम जी ने अब उसको कई प्रकार की बातें कही। राम ने एक राजनीति का उपदेश दिया, बड़ा सुंदर उपदेश है। कहने लगे, अरे भाई भरत, पिता को छोड़कर आप इस जंगल में किस लिए आए हो? भरत, कुछ ऐसा लगता है तुम्हारे चेहरे को देखकर पिता संसार में है या नहीं? ऐसा तो नहीं हो सकता कि पिता ने वहां शरीर रखा हो और तुम पिता की आज्ञा के बिना ही आ गए हो। यदि पिता लोकांतर चले भी गए हो तो भी भाई तुम यहां कैसे आए? क्योंकि राज्य तो तुम्हारे पास था, ऐसे राज्य को छोड़कर आना उचित थोड़ा ही था। सहकचित ब्राह्मणों विद्वान धर्म नित्यो महाद्युति। अच्छा, हमारे जो इक्ष्वाकु वंश के उपाध्याय ब्राह्मण है उनकी तुम पूजा करते हो कि नहीं? पिता की आज्ञा मानते हो कि नहीं? कौशल्या की, सुमित्रा की और केके की प्रसन्नता का तुम ध्यान रखते हो कि नहीं? देखो, अपने गुरुजनों के सामने सदा विनयी और शिष्ट रहना चाहिए। परंपरा से जो हमारी अग्नि है वो प्रज्वलित होती है कि नहीं? यज्ञ वगैरह होते हैं कि नहीं? देवताओं का, पितरों का, गुरुजनों का और अपने नौकरों का समय पर सम्मान करते हो कि नहीं? अपने जितने शस्त्र हैं उन शस्त्रों को जानने वाले सुधन्वा उन सदन्वा से बराबर सलाह करते हो कि नहीं? हमारे जो जितेंद्रिय शूरवीर पुरुष हैं उनसे बैठ करके मंत्रणा करते हो कि नहीं? देखो सबसे ठीक ढंग से किसी बात के निष्कर्ष के ऊपर विचार करना, ये अच्छे राजा के लक्षण होते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि कभी तुम ऐसे समय में सोते हो और ऐसे समय में तुम जागते हो। कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि तुम एक अकेले ही सब सोच लेते हो या भीड़ करके कोई विचार करते हो। नहीं, अपना विचार बहुत सोच समझ करके न तो अकेले करना चाहिए और न बहुत लोगों के बीच में करना चाहिए। केवल अपने विश्वस्त व्यक्ति हो उनसे किसी विषय में सलाह ले लेनी चाहिए। कोई भी काम करो, जिस काम को करें उसमें प्रयास तो कम करना पड़े और उसका फल खूब मिले, ऐसा तुम जरूर ध्यान में रखते होंगे। देखो हजार मूर्खों की अपेक्षा एक पंडित की सलाह लेना बड़ा श्रेष्ठ होता है। एक अमात्य यदि बुद्धिमान है, शूरवीर है, दक्ष है तो उसके कहे अनुसार चलना चाहिए। यदि कोई यह कहे कि हम हजार आदमी इस बात का समर्थन करते हैं पर ये तो देखो कि कहने वाले मूर्ख हैं कि कैसे हैं, अपठित हैं, मूर्ख हैं, जो इस विषय को जानते नहीं है लेकिन केवल संख्या का बल दिखाते हैं, उनकी बात नहीं माननी चाहिए। विद्वानों की, समझदारों की बात माननी चाहिए। अच्छा, और जो व्यक्ति श्रेष्ठ है उनको श्रेष्ठ जगह पर तुम बैठाते हो कि नहीं? जिस राष्ट्र के अंदर मंत्रियों का आदर होता है वो राष्ट्र सदा ही उन्नत होता रहता है। यहाँ कोई मांगने वाले आते हो उन मांगने वालों को तुम उदारता पूर्वक देते हो कि नहीं? और जो सब प्रकार का उपाय जानने वाला है, शूरवीर है, और जो है हमारे सेवा के अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं रखता है, उनको समय समय पर पारिश्रमिक देते हो कि नहीं? बलवान और युद्ध निष्णात जो है सैनिक, उनका भी सत्कृत्य मान्यता, उनका सत्कार करके उनका सम्मान होना चाहिए। समय पर सब नौकरों को भत्ता और वेतन मिलता है कि नहीं, इस बात का तुम ध्यान रखते हो कि नहीं? देखो कभी किसी व्यक्ति को समय पर वेतन और भत्ता नहीं दोगे तो उस समय बड़ा भारी अनर्थ हो जाने की संभावना है, क्योंकि उनके द्वारा जब विपरीत भावना पैदा हो जाएगी राजा के, तो वे राजा के प्रतिकूल कार्य करेंगे जिसका असर प्रजा पर पड़ता है और प्रजा का कोप फिर राजा को भोगना पड़ता है। और हे भरत, यथोक्तवादी दूत है, तुम्हारे पास जो है ऐसे दूत होंगे जिनको तुम जितना काम बुलाते हो आगे दूसरों के पास में वो थोड़े शब्दों में पूरी बात कहते होंगे, और दूसरे पक्ष की जितनी बातें हैं वे बातें अपने गुप्तचर ठीक ढंग से तुमको बताते हैं कि नहीं, इस बात का तुम ध्यान रखते हो? जरूर रखते होंगे, नहीं रखते हो तो रखना चाहिए। धर्मशास्त्रेषु मुख्येषु विद्यमानेषु दुर्बुधाः। देखो धर्मशास्त्र के विपरीत जो लोग अपनी बुद्धि की बात सोचते हैं वो बिल्कुल जो है उल्टी पुल्टी बात सोचते हैं। हमारी अयोध्या के अंदर हमारे पूर्वजों ने बड़ी अच्छी नीतियां बना रखी हैं। हमारे अमात्य लोग बड़े जितेंद्रिय हैं, कभी भी किसी प्रकार लोभ में आकर अन्याय का काम करने वाले नहीं है। वे हमारी अयोध्या की सदा रक्षा करते हैं, तभी तो हमारे यहाँ बराबर उत्सव वगैरह होते आए हैं। यहाँ कभी हिंसा आदि नहीं होती है। यहाँ हमारे जो जनपद है वो अदेव मात्र के माने सिंचाई के साधनों से संपन्न है। क्या वो जनपद तुम बराबर जो है संभालते रहते हो कि नहीं? और किसी को अपने छिपी हुई बात देखो, तुम अपने स्त्रियों से सब बात तो नहीं कहते हो, सब बात नहीं कहनी चाहिए। कई की बातें ऐसी हैं कि जो स्त्रियों से छिपा करके रखनी चाहिए, वो तुम गुप्त बात उनसे नहीं कहते हो ना, तो ठीक है। और अपने यहाँ राज्य के अंदर समय समय पर मनोरंजन के साधन जनता के सामने रखते हो कि नहीं? जरूर रखना चाहिए। और जितनी जितना आय होता है उससे कम व्यय होना चाहिए। यदि हमारा व्यय ज्यादा होगा, आय कम होगी, तो हमारा कोष घटते कोई समय नहीं लगेगा। और यदि हमारी आय ज्यादा है और व्यय हम सोच समझ के थोड़ा करते हैं, तो हमारे कोष में कोई क्षति होने वाली नहीं है। हमारे जो मित्र वर्ग है, उन मित्र वर्ग के अंदर आप उदारता पूर्वक धन का खर्च करते हैं कि नहीं, इस बात को आप ध्यान रखते हैं कि नहीं। और नास्तिकता है, झूठ बोलना है, क्रोध है, प्रमाद है, दीर्घ सूत्रता है, और ज्ञानियों से न मिलना है, और जो है आलस्य है, और पांचों विषयों के अधीन रहना है, एकांत चिंतन है, अनर्थों में अर्थ देखना है, और निश्चित किए हुए कार्य को प्रारंभ न करना है, मंत्रियों अपने मंत्र की रक्षा न करना, माने गुप्त मंत्र को प्रकट कर देना, और मंगल कार्य को चालू न करना, और एक साथ सब शत्रुओं के ऊपर युद्ध कर देना, ये 14 राजा के प्रधान दोष हैं। इन दोषों से तुम अपने को बचाते हो कि नहीं? और भाई यात्रा दंड विधान ये सब तुम ठीक ढंग से करते हो कि नहीं? मंत्री लोग किसी लालच में आकर किसी प्रकार से कोई प्रजा के अंदर अन्याय तो नहीं करते हैं? और तुम्हारे वेद सफल है कि नहीं, क्रियाएं सफल है कि नहीं, और तुम्हारा सुनना हुआ सफल है कि नहीं, इस बात पर तुम विचार करते हो कि नहीं? याम याम वृत्तिम वर्तते तातु यांचन पितामह, जिस वृत्ति का हमारे पूर्वजनों ने पालन किया और पिता ने पालन किया, तुमने उसको छोड़ा तो नहीं है ना? कभी अपने घर के अंदर अच्छा भोजन बनता है, क्या तुम अकेले तो नहीं खाते हो ना? अपने सब मित्रों को और सबको बुलाकर भोजन करते हो ना? इस बात का तुम पूरा ध्यान रखते हो कि नहीं? ऐसा जो ध्यान में रखने वाला होता है, वो वास्तव में मरने के बाद भी स्वर्ग में राज्य ही किया करता है। ऐसी लंबी चौड़ी राजनीति की बात उन्होंने कही। भरत जी महाराज ने राम जी की प्रत्येक बात को सुना और सुनकर के कहा कि महाराज, ये इतनी इतनी बातें मुझे याद करने की जरूरत भी तो नहीं है, क्योंकि मेरा राज्य से कोई संबंध भी नहीं है। आप जिस निमित्त यहाँ आए हो, ये राज्य तो महाराज आप ही का है। अब ये सारे राजनीति के जो उपदेश हैं, ये हमारे पर लागू नहीं होते, ये तो आप पर ही लागू होते हैं। हे आर्य पुत्र, हमारे पिता स्वर्ग चले गए, जाते जाते उन्होंने आपका स्मरण किया, लक्ष्मण का स्मरण किया और सीता का स्मरण किया। केकई ने जब इस प्रकार से उनको वरदान के अंदर आबद्ध कर लिया था, तब से उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई थी। सा राज्य फलम अप्राप्य, देखो मुझे बड़ा आश्चर्य है कि मेरी माँ राज्य को भी प्राप्त नहीं कर सकी, विधवा भी हो गई और शोक से कर्षित रह रही है, और मरने के बाद ये नरक में भी जाएगी। किसी प्रकार से केके को कोई लाभ नहीं हुआ। मैं तो महाराज आपका दास हूँ, स्पष्ट ज्यादा मुझे कहना आता नहीं है। मैं तो सारी अभिषेक की सामग्री लेकर यहाँ आया हूँ, सब सेनापति प्रजा सब आए हैं, विधवा माताएं भी आपके पास आई रही हैं, सारी अयोध्या आपके पास आ गई है। अब हम तो आपके बिना शरद की रात्रि के समान अयोध्या हो गई। अब हम आपका अभिषेक करके यहाँ से हम आपको अयोध्या ले चलने के लिए आए हैं। ऐसा कहकर के राम जी के चरणों में फिर भरत जी महाराज गिर गए। राम जी ने भरत को उठाते हुए कहा, अरे भरत, तुम तो बड़े, अपना कैसा अच्छा कुल है, इस कुल के अंदर तुम कितने चरित्रवान राजकुमार हो, पर एक बात बताओ, एक तुच्छ राज्य के लिए, कोई जिसका अस्तित्व नहीं है, उसके लिए मेरे जैसा आदमी जो है अपने दिए हुए वचनों को, पिता को दिए हुए वचने को वापिस वो उसको लंघन करके राज्य के सिंहासन पर जाके बैठ जाए, ये कैसे संभव है? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, न तुम्हारी माता का कोई दोष है, क्योंकि मैं बचपन से तुम्हारी माँ की गोद में ही तो रहा हूं, उन्होंने कभी भी किसी प्रकार से कोई ओछा काम नहीं किया। काम कारो महाप्राज्ञ गुरुणाम सर्वदा नघ है उपपन्नेशु दारेशु पुत्रेशु विधीयते, देखो गुरुजनों का जो काम है उनका तो अधिकार होता है कि वे मन में जैसा आदेश अपनी स्त्री को दे सकते हैं और पुत्र को दे सकते हैं। तो बताओ दशरथ जी महाराज को हमारे पर पूरा अधिकार था। उन्होंने यदि हमको वस्त्र जो है चीर वस्त्र पहन करके जंगल में जाने का आदेश दिया है तो उनके योग्य है और हम लोगों को भी चाहिए कि उनके आदेश का हम पालन करें। माता पिता ने मिलकर के हमको आदेश दिया है, भरत उस आदेश को हम कैसे छोड़ सकते हैं? हे महाभाग, और महाराज दशरथ तो इस समय स्वर्ग में जाकर विराजमान हो गए और पीछे से हम लोग राज्य प्राप्त कर ले रहे, ये एक बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। इसलिए हे भरत, अभी राज्य की तुम बात छोड़ो, 14 वर्ष के बाद हम वहाँ आएंगे और हम अपना राज्य ले लेंगे, कोई इसमें दोष की बात नहीं है, अभी राजा होना उचित नहीं है। भरत जी ने फिर कहा कि महाराज मैं राजगद्दी पर कैसे बैठ सकता हूँ, मैं तो राजगद्दी स्वीकार नहीं कर सकता, राजगद्दी तो बड़ा ही स्वीकार करता है। और स समृद्धाम मया सार्धम अयोध्याम गच्छ राघव, एक काम करते हैं आप अयोध्या चलिए, बनवास जाना है, बनवास में मैं चला जाऊंगा, मेरे बनवास में चले जाऊंगा, पिताजी की आज्ञा का भी पालन हो जाएगा और प्रजा के लिए बड़े आनंद की बात हो जाएगी। राम जी महाराज ने कहा कि जिसके लिए जो आदेश होता है उसका पालन करने में ही उसका भला होता है। उसके बाद भाई फिर भरत जी महाराज ने कहा कि पिताजी इस प्रकार से चले गए हैं, तो राम जी महाराज ने वहां पर बड़ा शोक किया और राम जी महाराज कहने लगे भरत से कि भरत तुम तो कहते हो अयोध्या जाओ, ऐसी अयोध्या में जाकर अब क्या करेंगे, पिता तो है नहीं, पिता हमारे चले गए हैं, अब तो वनवास की अवधि पूरी करने के बाद भी हमारा आने का मन बने न बने, पिता के बिना जाकर क्या करें। फिर राम जी महाराज ने सीता से कहा सीते तुम्हारे ससुर चले गए हैं, लक्ष्मण तुम पितृहीन हो गए हो, ये बात भरत के मुख से अपने को सुनने को मिल रही है। इस प्रकार से बड़े गदगद हो गए और उसके बाद मंदाकिनी पर्वत के मंदाकिनी नदी के वहां गए और वहां जाकर इंगुदी का फल लेकर और एक कपड़े के ऊपर उस फल का जो भीतर का भाग है वो उसके ग्रास बना बना करके और वहां अर्पित करके पिता से कहा हे पिताजी मैं वन में रहता हूँ, मैं जैसा खाता हूँ वही तो अपने पितरों को खिला सकता हूँ, मैं पकवान नहीं खाता, मिठाई नहीं खाता, तो मैं अब मिठाई दूं भी कहाँ से, ये फल ही आपको दे रहा हूँ। इस प्रकार से राम जी कहकर के वहां पर पिता के लिए रोने लग गए और फिर भरत जी महाराज फिर जो है इधर खूब जब रोने की आवाज आई तो नीचे वहाँ दूर से सैनिक लोग माताएं सब सोचने लगी कि ओहो अब तो भाई भरत ने राम जी को जाकर सब बात कह दी होगी और पिता के मरण की बात कहने पर ये रो रहे हैं। इधर भाई कौशल्या है, कौशल्या जी जो सुमित्रा से बोलती है कि देखो सुमित्रे ये रोने की आवाज राम की आ रही है, ये देखो लक्ष्मण भी रो रहे हैं, ओहो देखो पिता के निधन के समाचार से इनके मन में कष्ट तो होता ही है, चलो अब अपने भी चलते हैं, मंदाकिनी में जाकर स्नान करते हैं। वहां मंदाकिनी के वहां पर पहुंचे तो वहां पर जितने राम जी तो वहां से रवाना हो गए थे और जो इंगुदी के फल के ग्रास वहां पर बनाए हुए थे उसको सबको देखो सुमित्रे यहाँ आकर के राम ने पिता के लिए तर्पण दिया है, बेचारे ने फल का तर्पण किया है पर वही करे क्या, इसका जो खाद्य होता है उसी से ही वो तर्पण दिया जाएगा। कौशल्या ने कहा कि हे प्राणनाथ आप अपने पुत्र के द्वारा ऐसे ही पिंडदान के योग्य थोड़े ही थे, पर क्या करें समय परिस्थिति दैव भाग्य कुछ ऐसा ही है। इस प्रकार से केकई बहुत वहां पर रोने लगी और इधर वशिष्ठ जी महाराज सारी सेना को बोली दिए थे सब जो है उस मार्ग से चलकर राम जी के पास आ रहे हैं। माताएं जब उस मार्ग से राम जी की कुटिया पर पहुंची तो राम जी ने लक्ष्मण जी ने सीता जी ने तीनों आगे बढ़कर के कौशल्या के चरणों में प्रणाम किया, सुमित्रा के चरणों में प्रणाम किया और केकई के चरणों में प्रणाम किया। कौशल्या ने कहा कि सीता को प्रणाम, सीता ने पहले राम जी ने प्रणाम किया फिर लक्ष्मण जी ने किया फिर सीता ने किया। सीता ने जब प्रणाम किया तो कौशल्या बोली कि सीते तुम्हें देखकर तो मैं बहुत ही दुखी हो रही थी। देखो तुम्हारा पद्म के समान कोमल शरीर है, इसके ऊपर तो सदा ही चंदन का लेप उचित होता था, लेकिन यहाँ पर देखो मिट्टी की हवा तुमको लग रही है। तुम्हारा मुख देख करके मेरे मन में शोक पैदा हो रहा है। इस प्रकार से कौशल्या जी ने कहा तो सीता जी वहाँ पर बुरी तरह से रोने लग गई। राम जी महाराज ने कौशल्या जी से कहा कि देखो सीता को तो यहाँ किसी प्रकार से कोई कष्ट भी नहीं है। इस प्रकार से सब लोग वहाँ पर बैठे हैं और पीछे से सब लोग आ करके अपने अपने स्थान पर बैठ गए। सबके आ जाने के बाद एक ही सबके अंदर इच्छा है, अब देखें राम जी क्या कहेंगे और अब भरत क्या कहेंगे। ऐसी वहाँ पर सभा लगी हुई है और अब आगे एक दूसरे के साथ में जो बातचीत होती है उसका प्रसंग अगली कथा में कहने का। राम भरत के मिलन के साथ चित्रकूट उपाख्यान को भरत कृपा से उपस्थित कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में चित्रकूट का प्रसंग है। ये बहुत विचित्र प्रसंग है। वाल्मीकि रामायण में और अध्यात्म रामायण में जनक जी महाराज का यहां आना नहीं होता। गोस्वामी जी महाराज के रामचरितमानस में चित्रकूट के प्रसंग में जनक जी महाराज आते हैं। बहुतों को संदेह हो जाता है कि ये रामचरित्र सही है या ये रामचरित्र सही है। अलग अलग ऋषियों ने, अलग अलग कवियों ने अलग अलग कथा लिखी है, लेकिन सही कौन सी है? तो इस विषय में पहले भी निवेदन किया जा चुका है और अब फिर इस विषय में बता देते हैं कि भगवान का केवल एक बार ही रामावतार नहीं हुआ है कि उसमें हम एक बंधे हुए अवतार की बात बता सके। जितनी बार त्रेता युग होता है और जहां जहां अनंत ब्रह्मांडों में त्रेता युग आता है वहां वहां भगवान श्री राम का अवतार होता ही रहता है। अपने इस ब्रह्मांड में अभी कलयुग है तो किसी ब्रह्मांड में अभी त्रेता युग है, किसी ब्रह्मांड में अभी सतयुग है, किसी ब्रह्मांड में घोर कलयुग है, किसी ब्रह्मांड में सतयुग का अंत चल रहा है, किसी ब्रह्मांड में द्वापर चल रहा है, कहीं द्वापर का अंत चल रहा है। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत काल है, इसी प्रकार अनंत हरि का अवतार है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इस बात को हमारे ऋषि मुनि कल्प भेद के नाम से बता देते हैं। माने किसी कल्प में ये कथा सही है, किसी कल्प में ये कथा सही है। कल्प माने समय। एक ब्रह्मांड के उस समय में वो कथा बिल्कुल सही है कि जिसमें जनक जी महाराज आए हैं, और एक ब्रह्मांड में वो कथा सही है जिसमें जनक जी नहीं आए हैं, क्योंकि राम जी के अवतार होते ही रहते हैं बार बार। अभी होते क्या रहते हैं, हो रहा है अभी। किसी ब्रह्मांड में भगवान राम का जन्म हो रहा है, किसी ब्रह्मांड में वनगमन हो रहा है, किसी ब्रह्मांड में रावण के साथ युद्ध होता ही रहता है। अपने लिए बड़े सौभाग्य की बात है, भगवान की कृपा है और संत महापुरुषों की कृपा है कि अपने को इस युग के अंदर वाल्मीकि रामायण सुनने को मिलता है। ये राम आयन है, राम आयन एक ही बात है, माने राम जी के रहने की जगह है। आयन माने रहने की जगह, सर्वत्र व्यापक राम है, वो कथा के द्वारा उपलब्ध होते हैं। जैसे बिजली सब तार में है, पर जहाँ पंखा है, जहाँ लाइट है, वहाँ पर बिजली उपलब्ध होती है, ऐसे भगवान यहाँ उपलब्ध होते हैं। और कितनी महिमा है हमारे रामचरित की कि स्वयं राम जी बड़े प्रेम के साथ सुनते हैं। आप कहीं पर भी देख लो, रामचरितमानस में भगवान शंकर सुनाते हैं और जगत जननी माता पार्वती उसको सुनती है। अध्यात्म रामायण में भगवान शंकर कैलाश पर्वत में बोलते हैं तो पार्वती जी सुनती है। वाल्मीकि रामायण को ये लव और कुश गाते हैं और राम जी इसको सुनते हैं। कोई छोटे मोटे सुनने वाले नहीं, सुनने वाले बहुत बड़े स्थान रखने वाले हैं। ऐसा ये राम चरित्र है, ये केवल श्राव्य है, सुनने योग्य है, श्रद्धा करने योग्य है। कभी कभी कथा में विशेष प्रसंग आते हैं तो कहते हैं इतना लंबा प्रसंग क्यों कहते हैं, तो ये लंबा प्रसंग क्या है, ये इसमें आया हुआ इसलिए बताया जाता है। कितनी आप